मानुष है क्या सुनेगा, वही सुनेगा तो जो इमाम साहब करात पढ़ते हैं, अपने कानों से वही सुनेगा जो खुद पढ़ता है। बलवान लिखा है कि भाई अपनी नवाफिल में सुन्नतों में आदमी जो किरात करे तो किरात ऐसी करे कि जिस किरात की आवाज से कान सुने। हाथ, हाथ का इस्तेमाल अल्लाह ने तय किया है, उम्मीद है पहली बार की उठना तक उठाने बांधने तो कैसे बांधने, रुकों में कहाँ रखने, सज्जे में कहाँ रखने, हर चीज के अहकाम अल्लाह ने दिए हैं। जो नमाज में उसकी पाबंदी के साथ आदमी अपने आप को नमाज में नमाज अदा करता है तो नमाज से मकसूद इंसान के किस्मों का इस्तेमाल, आदमी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करने वाला बन जाए। जैसे नमाज से पाबंद है ऐसे पर अपने दुकान में, कारोबार में, चलने में, फिरने में, अपने घर में, अपनी माशरत में, अपने रहन सहन में, हर चीज में अल्लाह का पाबंद बन के जिंदगी गुजारे। अरे तो समझ में आ रही है, अरे सुनते हो कहीं वाल हो, नमाज ऐसी बननी चाहिए। इसके तबलीग में जब हम लगे थे उस जमाने में कहा जाता था कि नमाज का मकसद क्या है, तो नमाज ऐसी पढ़ो इसका मकसद यह है कि जो जिंदगी नमाज में ऐसी जिंदगी नमाज के बाद गुजार रही है पाबंदी वाली, ऐसी नमाज बननी चाहिए। क्या हमारी नमाज ऐसी है, यहाँ भी तो सलाम नहीं फेरी ने सब में पता नहीं क्या क्या करते हैं बातें करता है। सबसे पहले तो अल्लाह ने मस्जिद में ही दिन दुनिया की बातें करना मना फरमाया है, यही जरूरत है। सबसे पहले मोबाइल निकालता है, सलाम क्या फेरी है कि लोबा मोबाइल निकालो, ये आज किसी मुसलमान कहा लिया है। सलाम फेरने के बाद मोबाइल दे के फिर रखेगा, सलाम फेरने के बाद अल्लाह की तस्वीर नहीं लगेगा। क्या हमारा हाल है, अभी तो मस्जिद में मुसलमान अल्लाह के हुक्म का पाबंद नमाज पढ़ने के बाद अपने आप को बना था बाहर क्या करेंगे, इसकी नमाज बनाने की जरूरत है। नमाज पढ़नी भी है और नमाज सही पढ़नी है और नमाज को अल्लाह की इबादत बनाकर अदा करना है। और तीसरा माल से है मोमिन माल रज़क अल्लाह हुम युन्फिकून, तन मन और धन इन तीनों को सही करने का नाम तक्वा है। हाँ, जो कुछ हमने दिया है उसको खर्च करते हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। खर्च कब करेंगे, जब माल हासिल करेंगे, तो माल कैसे हासिल करना है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, हम तो एक मुसलमान माल ही कमाता। तो जो हलाल माल कमाया है उस माल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करना, इस रास्ते से बचना, तबजीद से बचना, आराम रास्तों को खर्च करने से अपने आप को बचाना। माल खर्चने के तीन गलत रास्ते हैं, एक तो इसराफ है, एक तकदीर है और एक तर्फ है, तर्फ आराम तरीके। हुजूर खर्ची तो यह है कि जितनी जरूरत इससे ज़्यादा खर्च करना, और खर्च करने की ज़रूरत है लेकिन ज़रूरत के अतबार से उस ज़रूरत से ऊपर ज़्यादा खर्च करना। जहाँ पाँच रुपये की जरूरत, पाँच रुपये से जरूरत पूरी हो जाती है और वहाँ छः और सात रुपये खर्च कर रहा है, ये दो रुपये इसराफ है। तब्दील तो बगैर ज़रूरत के खर्च करना, जहाँ ज़रूरत है ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है खर्च की, जैसे आज कम से कम डेकोरेशन खर्च करता है, हर चीज़ में डेकोरेशन है, घर में कपड़ों में हर चीज में डेकोरेशन है। आप देखिए भी आजकल अजीब जो किस्म के कपड़े चले हैं, डेकोरेशन। ऐसा नहीं कि इसके पास कपड़ा कम हो गया तो ये दूसरा काला काला लगा रखता है, ये नहीं है, डेकोरेशन है वो, हर चीज में डेकोरेशन है। फरमाइए जितनी चीजें हैं बगैर जरूरत की चीजें हैं ये तब्दील है, और तब्दील करने वाले शैतान के भाई हैं। और तीसरा मसरत है हराम जगह खर्च करना। जैसे आज का मुसलमान, नबी ने फरमाया कि दोनों दोनों की हड्डियों के नीचे इजार का लटकाना हराम है। अब इसमें जितना कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है कहाँ हो रहा है, हराम पर खर्च हो रहा है। और बहुत सी चीजें, ये तीन है। कुरान में कुरान कह रहा है वलो अरदना अन नुहलिक क़रियतन अमरना मुतरफीहा फबसकू फीहा फहक़ालिकल क़ौलु फदमरना तदबीरा। हम जब किसी बस्ती को हम बर्बाद करना का इरादा कर लेते हैं तो वहाँ के मुतरफ यानी जो अपने माल को हराम रास्तों में खर्च करने वाले लोग हैं, इनकी जिंदगी में फिस्क फुजूर बढ़ जाता है। ये बात अल्लाह की जमीन पर फिस्क फुजूर बढ़ा कि जिंदगी में फिस्क फुजूर ले आते हैं बहुत ज़्यादा, इनका माल हराम रास्तों पर और ज़्यादा खर्च होता है। तो वह सब उसी है पाक वाले अनुभव जब अल्लाह के अजाब का फैसला क्या हो जाता है, और जब अल्लाह का फैसला आ जाता है कदम मरना अजमेरा हम तमाम आबादियों को तहस नहस कर देते हैं। आज दुनिया में हो रहा है, कई जलजलों की तरह होता है, कई हवाई तूफानों की तरह हो रहा है, कभी आपस में आपस के जलाजुओं में आबादियों की आबादियाँ तहस नहस हो जाती हैं। इसमें भाई मेरा अजीज हो, रमजान हमें तपरे की जिंदगी लेने के लिए आया है। हम अपने रोजे को रोजा इबादत बनाएं, भूखे प्यासे इस अंदाज को कम पर हम खाने पीने को छोड़ देते हैं, हालांकि वो हलाल क्या तो फिर और गुनाहों को भी छोड़ दें, गलत देखना, गलत बोलना, गलत पकड़ना, गलत चलना। रोजा तो पूरे जिस्म के तमाम आजा का है, आजा हर हर रोज को आराम से बचाना। जैसे आदमी अच्छे कपड़े पहनता है तो कपड़े को दाग में लगे वो ज्यादा नहीं जाता, कपड़े को दाग नहीं होना चाहिए। ऐसे रोजे को रोजा खराब नहीं होना चाहिए, बचाना चाहिए। क्यों कैसे बचेगा कि ज़्यादा दोस्तों की मर्जी से बैठोगा, बैठोगे तो इधर उधर की बात करके भी उसका कुछ होगा ही ना, गलत बोलोगे। ऐसी जगहों पर जाकर जाने से बचाओ अपने आप को जहाँ पर हमारा रोजा खराब हो। आदमी अपने आप को, रमजान का महीना तो कुरान की तिलावत का महीना है, अपने आप को कुरान की तिलावत में लगाए। लिखा है अल्लाह के तकर्रुब का सबसे ज्यादा कवी रास्ता कुरान की तिलावत है। जिक्र इलाही में कुरान पाक की तिलावत के जरिए आदमी अल्लाह का कुर्ब बहुत ज्यादा हासिल करता है। मैं आप कुरान की तिलावत में लगाओ, कुरान से पढ़ना नहीं जानते कुरान से सीखो। कुरान का महीना रमजान का महीना तो कुरान ही का महीना है, उसको सीखना सिखाना उसकी तिलावत करना और फिर कुरान पाक को दुनिया में फैलाना। कुरान दुनिया में फैलाने के लिए अंदर उतारा है कि कुरान पाक की जिंदगी एक एक घर में दाखिल कैसे हो। वाहियात हाउस में कुरान दाखिल हो इसकी फिक्र मुसलमान करनी चाहिए। अरे वाहियात हाउस आप जानते हो, जिसको लोग व्हाइट हाउस कहते हैं, जहाँ सब काले काम होते हैं, जुल्म के, पार्टी के, खुदा की मखलूक को सताने के, وہاں بھی قرآن والی زندگی داخل ہے، مسلمان زندگی مسلمان کی ذمہ داری ہے. اپنے اپنی ذات سے لے کر اپنے بال بچے، اپنے خاندان میں، اپنی بستی میں، اپنے وطن میں اور اپنے ملک میں اور دنیا کے ایک ایک ملک میں اور ایک ایک گھر میں اور قرآن پاک والی زندگی داخل ہو، اس کی میں ذرا فکر کرتا ہوں. رمضان کے مہینے دار میں کھانا چھوڑا ہے، کھانے زیادہ کھانے کے لیے چھوڑو، رمضان کا مہینہ ہے. جیسا ہمارے ملک کے ہندوؤں نے سمجھا ہے کہ رمضان میں مہینہ کھاؤ پیو نہ سے ذرا سے نہ رمضان میں مہینہ تاکہ تمہارا بازار میں نہیں آئی رہے. آج کے آج ہمارے ملک میں ہمارے ہندوؤں نے رمضان کا مہینہ یہ سمجھا ہے کہ کھاوا پیا نہ مہینہ سلمان کی زندگی سے. سلمان نے رمضان کے مہینے میں اس کا بہت اہتمام کیا ہے، آزاد رہو، قسم قسم کے کھانے لاؤ، قسم قسم کے کھانے کھاؤ. حالانکہ رمضان کا مہینہ تو بھوکا رہنے کا مہینہ تھا، دن بھر بھوکا اللہ نے رکھا تھا تاکہ تجھے پتہ چلے کہ بھوک کیا چیز ہے، تاکہ تو اپنی زندگی میں اپنے غریبوں کا خیال رکھنے والا بنے، تاکہ اللہ نے مال رکھا دیا ہے تو مال کو قسم قسم کی نوبیٹیاں گھر میں لانے کے چکر میں نہ پڑے بلکہ اپنے غریبوں کا خیال خبر رکھنے والا بنے. کہ بھوک کسے کہتے ہیں؟ کہ ہمارے محلوں میں مزدور لوگ ہوں، مزدوروں کا حال، ان کے وہ بےچارے بھوک کے پیاسے ہوں گے، ان کی خبر آج بھی کھانے سے پھر ان کے سب خیر خبر رکھنے والا بنے. ہاں حج کیا ہے؟ حج تو اپنے غریبوں کی زندگی سمجھنے کے لیے جا. حج میں مصطفیٰ کی رات گزار تاکہ تجھے پتا چلے کہ تیرے غریب بھائی بہنیں اور تیرے غریب بھائی تیرے وطن میں تیرے جن کے پاس اوڑھنے کی چھونا کا دن ہے وہ سردی میں کیسے رات گزارتے ہوں گے. ایک بار گزار بغیر مکان کی تاکہ تجھے پتا چلے، لیکن غلط غریبوں کے پاس سر چھپانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کیسے رہتے ہوں گے؟ اسلام کا حکم انسان کو زندگی اور انسان کو اپنی ہمدردی سکھانے کے لیے ہے. اس کے اندر خدا کی مخلوق کے اندر بھی آئے. حضرت صحابہ کی زندگی میں انسانوں کی ہمدرد یہاں تک آ گئی تھی کہ وہ خود بھوکے رہتے تو میدان کارزان میں زخم کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، پیاس لگی ہے اور مانی رہے کہ بھائی آیا ہے پتا نہیں میرا وہ دوسرا بھائی وہ بھی پیاس کو گرا. یہ زندگی میں لانا ہے، اس لیے رمضان آیا ہے. اور کوئی زندگی قرآن پاک کو ترائی میں سنایا گیا ہے، رمضان میں عبادت بڑھائی گئی، پانچ تک کی نماز تو ہے ہی، اس کے ساتھ 20 رکعت اور بڑھو، عبادت بڑھاؤ اور نماز کو بڑھاؤ، کہ نماز کے راستے سے تمہاری زندگی میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کرنے کا حوصلہ اور جذبہ تمہارے اندر سال بھر باقی رہے. رمضان آیا اس لیے کہ جیسے رمضان گزارتے ہو ایسے پورا سال گزارے ہو، پھر تقویٰ ملے گا، تقویٰ ملے گا تو سب کام تمہارے بن جائیں گے. دنیا والوں کی خوشامد کرنے سے زندگی نہیں بنتی، اور ان کے دروں پر جا کر ہاتھ پھیلانے سے کام نہیں بنتے. اللہ کے نبی نے تو بڑی بڑی بتائی ہے کہ جو بھی مسلمان بغیر ضرورت کے دوسرے مسلمان کے سامنے کسی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلائے گا اللہ اس پر تنگی اور فخر ادا کرے گا، اس کا فخر تو نہیں ہوگا. اور نبی نے تو अपने अपने गरीब गरीब अपनी बच्चों को तालीम दी है कि तुम्हारे पर कोई हाल आए फाका फाका है इसी को मत कहो, अपने अल्लाह के साथ मांगा करो, अपने फख्र फाका को छुपाओ, किसी पर जाहिर ना होने दो, तीन दिन तक सबर कर लो। अगर तीन दिन तक तुम सबर कर दोगे तो अल्लाह ने अपने पर ये बात तय की है कि मैं अपने उस बंदे के लिए एक साल के लिए हलाल रोजी का दरवाजा खोलूंगा। अपने बाप के पास भी मत जाओ जरूरत लेकर, वो भी मोहताज है अल्लाह के बंदे। जना फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में वो तो महीनों चूल्हा नहीं चलता था, लेकिन अपने घर का हाल पूछू फिर पास ही आएगा, अपने हालत को छुपा लेते आपके पास। हालांकि आपके साहबों के पास अंदर मालदार भी थे, लेकिन आपने अपनी हालत को किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। अपनी जरूरतों को कम करना और अपनी जरूरतों को छुपाना, जरूरतें कम करो ताकि किसी के सामने मोहताज न बने। आज हम जो मोहताज बन रहे हैं अपनी जरूरतों के लिए नहीं बन रहे हैं, अपने ख्वाहिशात के बन रहे हैं। हम मालदारों की जिंदगी देख के राह टपकाते हैं, और घर आना जो दी जाए तो अब भी मांगे अरे भाई भाई पसंद नहीं करो बाबा भाई आदत मत है पैसा को कर। आप अपने बेटे पर सकते हैं अल्लाह से नहीं कहता, वो तो वहाँ लंदन में अफ्रीका में अल्लाह तो तेरे करीब है उससे कह रहे, लेकिन वो सीखा नहीं है। तबलीग में इसको सीखने कहते जाओ, तबलीग में जो सबसे पहली बात सीखनी है कि अल्लाह के सिवा हर एक से अपनी निगाह को हटाओ और एक अल्लाह पर निगाह लाओ, एक अल्लाह के आदर सकते हैं, वही मेरी जरूरत को पूरी करने वाला है। सबसे निकाह करना ला इलाहा में यही है कि ला इलाहा के जरिए हर मखलूक से अपनी निकाह को अपने यकीन को हटाओ, और इज्जतना के जरिए अपने दिल में एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के यकीन को दिखाओ कि मेरी नियमत की जरूरत भी वहीं से पूरी होगी और मेरी बड़ी से बड़ी जरूरत भी वहीं से पूरी होगी। अल्लाह के सिवा सब फकीर है, अल्लाह के सिवा बोलो सब फकीर, और जो जितना दुनियादार मालदार इतना बड़ा फकीर। हम अपनी जरूरतों को फकीरों से पूरा करना समझते हैं और नदी की बारगाह से लेना नहीं सीखा हमने। जैसे बताया कि मुझी से अपनी जरूरतों को पूरा करने का यकीन करो तो कभी मेरे से जरूरत पूरा करने का रास्ता क्या, चलो मैं नमाज देता हूँ। नमाज के जरिए मेरे दरबार में आकर मुझसे कहो मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को यही बात फरमाई कि अपनी जरूरतों को फर्ज नमाज के बाद अल्लाह से मांगो, इससे मांगो बोलो अल्लाह से मांगो फर्ज नमाज के बाद। मुसलमान की फर्ज नमाज के बाद की दुआ अल्लाह कबूल करता है, लेकिन हमने सीखा नहीं। हालांकि रास्ता बहुत आसान है, अरे तो अपने भाई के पास मांगेगा, बाप के पास मांगता, भी दो चार मतलब मांगने के बाद होना चाहिए जिनसे दंडल दे नहीं तो उसके निगाह से गिर जाएगा। और अल्लाह की वादा में आएगा तो अल्लाह की वादा में जितनी मतलब आएगा इतना अल्लाह खुश होगा। अल्लाह से सवाल तो इबादत है, अल्लाह बंदे से खुश होता है। हमारे दिल फरमाते हैं अल्लाह की वादा में मुसलमान की दुआ से ज्यादा काबिल एहतराम और कोई अमल नहीं है। दुआ काबिल एहतराम है, अल्लाह अपने बंदे की दुआ का इंतजार करता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे मैं उसको दूंगा।